नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अवसरों वाला देश। उन्होंने सुधारों, स्थिर नीति व्यवस्था और उच्च विकास का वायदा किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना लाएगी। केंद्र ने देश में जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 जारी की। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक प्रमुखों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर वक्फ संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को समर्थन दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए 2 महीने का वीजा माफी कार्यक्रम शुरू किया और जर्मनी में बधिर निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत सबसे अधिक अवसरों वाला देश है। उन्होंने देश में कारोबारी सुविधा, सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्था और उच्च वृद्धि दर का वायदा भी किया। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में निवेशकों से कल नवाचार, श्रेष्ठ निष्पादन, सकारात्मक पहल और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का संकल्प लेने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सफलता की अनूठी गाथा लिख रहा है।
भारत आज एक अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। भारत में हमने रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया है। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है।
श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मजबूत इरादों, उम्मीदों और विश्वास के साथ की है।
बीते 3 महीनों में हमने गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घरों को स्वीकृति दी। हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के लिए विस्तार का फैसला हुआ। बेहतर क्वालिटी के बीजों की 100 से अधिक वैरायटी जारी की। 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई, जिसका सीधा फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा और 100 दिन के भीतर ही देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के अपने मंत्र के साथ लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
बीते 1 दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और उन्होंने एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण किया है। ये स्पीड और स्केल हिस्टोरिक है। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये भारत में इसलिए हुआ क्योंकि हमने गरीबों के प्रति गवर्नमेंट की अप्रोच बदली।
ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, समुद्र तल और अंतरिक्ष के क्षेत्र पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश को वर्तमान चुनौतियों और भावी अवसरों के लिए तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण का केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 1 लाख मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं और अगले 5 वर्ष में 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 99% से अधिक मोबाइल फोन देश में ही बनाए जा रहे हैं और इस वर्ष एप्पल भी अपना नया फोन भारत में बनाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण वर्ष 2013-14 में 29 अरब डॉलर का था, जो 2022-23 में बढ़कर 105 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में रेल, सड़क, हवाई अड्डे और बंदरगाह से जुड़ी 2 ट्रिलियन डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्र ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 जारी कर दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कहा कि इस नीति से देश में जैव विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और खाद्य, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये नीति निजी भागीदारी से लागू की जाएगी और इससे रोजगार सृजन भी होंगे। जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री से देश की भावी जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक वृद्धि पर्यावरण के अनुकूल हो सकेगी। मंत्रिमंडल ने बायो नीति को हाल ही में स्वीकृति दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल से मुलाकात कर वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए प्रस्तावों को समर्थन दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नशीन परिषद के अध्यक्ष और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि समिति वक्फ बोर्ड के कारण देश भर की मस्जिदों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान देगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि यही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के बिना विश्व को जीवन के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा और भविष्य के लिए संघर्ष भी होगा। उपराष्ट्रपति ने कल उत्तराखंड में देहरादून में कहा कि वर्तमान में विश्व जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के शुरुआती नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसे डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है। ये अधिनियम पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगा। अधिसूचना के अनुसार योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वालों को डिजिटल भारत निधि से राशि दी जाएगी। इस निधि से दूरसंचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख बदलकर 5 अक्टूबर कर दी है। इस पहले मतदान 1 अक्टूबर को होना था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव की मतगणना अब 8 अक्टूबर को एक साथ होगी। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने अपने प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 40 नेता शामिल हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों से निपटने के लिए त्वरित विशेष न्यायालय की स्थापना और इनके संचालन में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने एक पत्र में राज्य में वर्तमान त्वरित न्यायालयों में लंबित मुकदमों पर चिंता व्यक्त की। इस बीच कोलकाता में महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। सीमा सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस GRP ने त्रिपुरा में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में बांग्लादेश के 7 नागरिकों और 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। पिछले 3 महीने में अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में अगरतला और अन्य स्थानों से 310 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों और 34 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में 2 महीने का व्यापक वीजा माफी कार्यक्रम आज से लागू हो गया है। इसमें अवैध रूप से रह रहे लोगों को अपनी स्थिति को नियमित करने या बिना दंड के देश छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात में पर्यटन और रेजिडेंसी वीजा सहित ऐसे किसी भी वीजा धारक को अपनी स्थिति को नियमित करने का मौका मिलेगा जो देश में वैध तौर पर काम कर रहे हैं लेकिन जिनकी वीजा की अवधि बीत गई है। ऐसा न करने वालों को बिना किसी जुर्माने के देश छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। यह माफी उन लोगों पर भी लागू होगी जिनका जन्म संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है लेकिन जिनके पास सरकारी दस्तावेज नहीं है अथवा जिनके प्रायोजक फरार हैं। हालांकि अमीरात में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले इस कार्यक्रम का लाभ नहीं ले सकेंगे। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
इसराइल और हमास गजा में 3 दिन तक कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। ये सहमति 6,40,000 बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए बनी है। गजा में पोलियो से 10 महीने के एक बच्चे को लकवा मार देने की खबरें आई थीं। पिछले 25 वर्ष में गजा में पोलियो का ये पहला मामला था। मौसम विभाग ने आज विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक के भीतरी और तटवर्ती इलाकों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में बुधवार तक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कल तक भारी बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान असना पश्चिम में दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और कल तक कमजोर होकर उत्तर पश्चिम अरब सागर के ऊपर दबाव में बदल जाएगा। इसके अलावा उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों के पश्चिमी मध्य भाग और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव उत्तर पश्चिम भाग की ओर बढ़ गया है। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी दिल्ली।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
जर्मनी के हनोवर में वधिर निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने स्वर्ण और पुरुष वर्ग में अभिनव देशवाल ने रजत तथा शुभम वशिष्ठ ने कांस्य पदक जीता। टीम स्पर्धा में अभिनव देशवाल, शुभम वशिष्ठ और चेतन सपकाल की तिकड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। उधर पेरिस पैरालंपिक के 4थे दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रंगोली और कूट T47 स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में निषाद उतरेंगे। 3 पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा निशानेबाजी में मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। वहीं सुहास यतिराज और सुकांत कदम भी बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले कल रूबीना फ्रांसिस ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित 5 पदकों के साथ पदक तालिका में 22वें स्थान पर है। इस बीच दक्षिण कोरिया में एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप में हिमांशी टोकस ने 63 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद चंद्रिका। महिलाओं के खिलाफ अपराध और अत्याचार मामले में त्वरित न्याय की प्रधानमंत्री की अपील को राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, देशबंधु, राजस्थान पत्रिका और दैनिक जागरण ने बड़ी सुर्खी बनाया है। कहा, जितनी तेजी से फैसले आएंगे सुरक्षा का उतना ही भरोसा होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलकर मतदान 5 अक्टूबर को तय करने और मतगणना 4 के बजाय 8 अक्टूबर को कराए जाने की खबर जनसत्ता सहित कई अखबारों ने सुर्खियों में दी है। देशबंधु ने लिखा है, जम्मू कश्मीर के चुनाव में पहले चरण में 9 महिला उम्मीदवार। सितंबर महीने में उत्तरी भारत में झमाझम बारिश की उम्मीद, लिखता है नवभारत टाइम्स। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, सामान्य से अधिक बारिश के बावजूद सितंबर में भी खूब होगी वर्षा। हिंदुस्तान ने चिंताजनक शीर्षक से लिखा है, अगस्त की रातें 123 साल में सबसे गर्म रही। सामान्य से 16% अधिक बारिश होने के बावजूद न्यूनतम तापमान औसत से अधिक रहा। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल के प्रदर्शन पर भी अखबारों ने पहले पन्ने पर खबर दी है। दैनिक जागरण लिखता है, भारतीय निशानेबाजों का जलवा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अवसरों वाला देश। उन्होंने सुधारों, स्थिर नीति व्यवस्था और उच्च विकास का वायदा किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना लाएगी। केंद्र ने देश में जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 जारी की। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक प्रमुखों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर वक्फ संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को समर्थन दिया और जर्मनी में बधिर निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।